मैं चाहता हूं कि हम ईमानदार हैं, यीशु के नाम से कहलाते हैं, इसलिए हम क्या करें, जब भी खुदा के घर में आए जो पढ़ सकते हैं वो क्या करें जी, खुदा का कलाम लेकर आया करें, क्योंकि क्या लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो जब हम कलाम को सुनेंगे और उसे बयान किया जाएगा तो क्या होगा जी, हमारा ईमान बढ़ेगा, हमारे ईमान को तकवीयत मिलेगी। सो इसलिए खुदावंत का शुक्र करेंगे उसके कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जोरदार तालियां। आए हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे कि दुआ के असर से क्या कुछ हो सकता है, दुआ के असर से क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, यानी कि पहले पेज से लेकर बाइबल मुकद्दस के आखिरी पेज तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें गवाहियां मिलती हैं, वाकयात मिलते हैं, बहुत से ऐसे क्या है जी, हमें जबरदस्त वाकयात मिलते हैं जिसमें क्या है जी, दुआ शामिल है, बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, जैसे कि अभी अभी कैदियों के लिए दुआ की गई है, क्या की गई है जी, कैदियों के लिए दुआ की गई है, और अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि कैदियों को इस तरह याद करो कि गोया तुम उनकी मान क्या रखते हो जी, जिस्म रखते हो। तो जो मसीह के नाम की खातर सताए जाते हैं उनके लिए क्या करनी चाहिए जी, दुआ करनी चाहिए। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम पूरे मुल्क का पूरी दुनिया का जायजा लेते हैं तो पूरी दुनिया में जब हम जायजा लेते हैं जो मसीही लोगों का सताया जाने का पैमाना है उसमें कितने मुल्क शामिल हैं जी, 50 मुल्क हैं जो मसीह के नाम से मसीही होते हुए लोग जो उन मुल्कों में रहते हैं सताए जाते हैं। उन 50 मुल्कों की लिस्ट में आपको पता है पाकिस्तान किस नंबर पर आता है, पाकिस्तान नंबर 5 पर आता है। पिछले साल जब उन्होंने दोबारा सर्वे किया तो पाकिस्तान उससे पहले क्या था जी, नंबर 15 या 16 पर था, और पिछले साल के दौरान क्या है जी, अब पाकिस्तान किस जगह पर पहुंच गया है जी, मसीहियों को सताए जाने में, दुख दे जाने में, कैद खानों में डाले जाने में, और घर बार तबाह करने में, और घर जलाए जाने में, किसी की बेटी को उठा लिया, किसी को क्या कर दिया जी, उसका सब कुछ छीन लिया, उन तमाम बातों में कितने नंबर पर आ गया है जी, नंबर 5 पर। इसलिए ईमानदारों की दुआ के असर से क्या हो सकता है जी, बहुत कुछ हो सकता है। सवाल मैं चाहता हूं इमाल की किताब में से हम इमाल 12 बाब में हम जब पढ़ेंगे उसकी 6 आयत से जब हम पढ़ेंगे 19 आयत तक तो हम यहां पर देखेंगे पत्रस कहां पर है जी, कैद में है। पत्रस कैद में है, और पत्रस का कैद में होना और उसके कैद में जाने की वजह क्या है जी, यीशु मसीह की गवाही। अभी अभी भाई ने बड़ा जबरदस्त और बहनों ने गीत गाया, कहते यीशु दी मुनादी तुसा करनी नहीं, जग मैनू रोके तेरा नाम लैण तो, क्या नहीं करनी, मैं गल ओदी मंगनी नहीं। पत्रस यहन्ना और यकूब को और बाकी शिगिर्दों को देखते हैं क्या कर रहे हैं, वो यरूशलम में गवाही दे रहे हैं, फकी फरीसी सदूकी और तमाम जो रहनुमा है वो क्या करते हैं, ये नाम लेकर दोबारा गवाही ना देना। सो आए मेरे साथ देखे दुआ के असर से क्या कुछ होता है। इमाल की किताब उसका 12 बाब जब हम उसकी 6 आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पत्रस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजे पर कैदखाना की निगाहबानी कर रहे थे। पत्रस को यहां पर देखते हैं कहां पर है जी, कैदखाना में है। कैदखाने में जाने की वजह क्या है, यीशु मसीह की गवाही। उसे कहा गया था कि गवाही नहीं देनी, उसे कहा था ये नाम लेकर गवाही या मुनादी नहीं करनी, और पत्रस ने उनको क्या कहना शुरू किया उनके मुंह पर, ये वही यीशु है जिनको तुम जिसको तुमने पकड़वाया और दुख दिया, मसलूब किया और कब्र में उतारा और उसकी कब्र पर पहरे बिठाए और उसकी कब्र पर मोहर लगाई और वो तीसरे दिन अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये पतरस की गवाही थी, ये शिगिर्दों का बयान था। और इसीलिए गीता कहते यीशु दी मुनादी तुसा कर नहीं। फकीयों, फरीसियों ने, रोमियों ने, सदूकियों ने और आज हर एक जो यीशु के साथ मुत्तफिक नहीं, जो यीशु की बात नहीं मानता, वो क्या कहता है? यीशु दा नाम मत लेना। बदरूहें कहती हैं यीशु का नाम मत लेना क्योंकि उसके नाम में क्या है जी? कुदरत है, सच्चाई है, भलाई है। सो पत्रस को हम देखते हैं वो कितनी जंजीरों से जकड़ा हुआ है जी? दो। और उसके साथ और क्या है जी? उसके साथ कितने पहरेदार हैं जी? और उसके कैदखाना के बाहर क्या खड़े हैं जी? सिपाही। सो पत्रस ऐसे है जैसे बहुत बड़ा डाकू या बहुत बड़ा क्या है जी, खतरनाक बंदा है जिसके साथ दो दो सिपाहियों को बांधा गया है, चिर जंजीरें लगाई गई हैं और उसके रहने की जगह जहां पर वो है वहां पर भी क्या है जी, कैदी खड़े किए गए। आगे क्या लिखा है? साथवीं आयत। जिनके पास बाइबल, मैं चाहता हूं कि यहां पर लफ्ज फरिश्ते गिने कितनी दफा इस्तेमाल हुआ। पहली आयत, सातवीं आयत को लिखेंगे। देखो खुदावन का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथ से खुल गई। पतरस सो रहा है उस कैदखाना में। हो सकता है पतरस ने आज सोच लिया हो कि यार आज मेरा आखिरी दिन है, मैंने जो मुनादी करनी थी कर ली है। क्योंकि पतरस ने यूहन्ना के बारे में सुना हुआ था, यूहन्ना जो अलीशबा का, जिक्रिया का बेटा था, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, जिसने यीशु मसीह के ऊपर रूह को कबूतर की मानद ठहरते हुए देखा था और सुना था, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पतरस ने दूसरे ईमानदारों का सुना हुआ था कि सौल नाम शख्स ने घर घर जाकर घरों में तबाही फैलाई है, मसीहियों को कत्ल किया है और वो क्या कर रहा है? यहां पर भी मसीहियों को मारने के लिए और तबाह करने के लिए आया है। सो पत्रस क्या कर रहा है जी? सुकून से सो रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का क्या किया है जी? प्रचार किया है, गवाही दी है, बानिस्बत के उसका इनकार करो। आपको याद है पत्रस ने कितनी दफा यीशु का इनकार किया था? तीन दफा। यहां पर हम दुआ की कुदरत को देखेंगे आगे चलकर कि कलीसिया उसके लिए क्या कर रही है जी? दुआ कर रही है, इसे भेजी घर ले जाओ। और नौवीं आठवीं आयत में क्या लिखा है? सातवीं आयत में एक दफा फरिश्ते का इस्तेमाल हुआ लफ्ज, दूसरी बात आठवीं आयत में लिखा है फिर फरिश्ते ने उससे कहा कमर बांध, अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। इस आज से पता चलता है कि पतरस अपना सब कुछ समेट कर नहीं बैठा हुआ कि मैं यहां से जल्द निकल जाऊंगा। इस आयत के असर से, इस आयत की तफसीर से पता चलता है कि पतरस को पता है कि यहां से निकलना नामुमकिन है। वो सुन चुका था कि हेरोदीस की बीवी हेरोदियास ने पतरस के उस हम खिदमत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर इल्जाम लगाया था, उसकी बेटी ने जश्न करके उसका सर मांग लिया था। वो कैद से नहीं निकला, अब मेरे भी यहां निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए वो क्या है जी, यहां पर लिखा है वो लेटा हुआ है, उसने अपना चोगा भी उतारा हुआ, उसने अपनी जूती भी उतारी हुई, उसने क्या है जी, अपनी कमर बंद भी जो साफा लपेटते हैं कमर पर उसे भी खोल कर रखा हुआ, सुकून से बैठा है। और आगे क्या हुआ? नौवीं आयत में लिखा है वो निकल कर उसके पीछे हो लिया। पतरस की यहां पर बात को देखते हैं, वो फरिश्ते के हुक्म के मुताबिक जो कहता है करता है। कभी भी फरिश्ते की मुखालफत में ये ना कहें सची वाकई मुझे करना होगा। याद है आपको जब जिक्रिया पर खुदा का फरिश्ता हैकल में जाहिर हुआ था तो हैकल में ज़िकरिया अपनी बारी के मुताबिक खुदा के हुजूर खुशबू के मज़बा पर खुशबू जला रहा था और खुदा का फरिश्ता आकर उसे कहता है तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना जी, यूहन्ना रखना। और कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हूं। जब जब फरिश्ता कलाम करता है उस पर यकीन करें। सैरा को जब देखते हैं वो अपने खेमा में बैठी हुई थी, इब्राहिम खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस की हजूरी में उन फरिश्तों से बात कर रहा। उन्होंने कहा कि इसी साल इसी महीने आने वाले सीजन में तेरे बेटा होगा। और टेंट में क्या है जी, सारा क्या करती है ये कैसे हो सकता है उसने हंसी में फरिश्ते की बात को उड़ाया और खुदा के फरिश्तों ने क्या कहा, तू उसका नाम क्या रखना जी, इसहाक रखना। क्या रखना जी, इसहाक रखना। और इसहाक क्यों रखा गया, इसहाक के इब्रानी नाम का मतलब क्या है जी, हंसना। सारा खुदा पर हंसी के ये कैसे हो सकता है, खुदा कहता है कि मैं इसे करके दिखाऊंगा ताकि तू ही ना खुश हो बल्कि जो तमाम है वो हंसेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि 99 साल की बुजुर्ग औरत को 100 साल से ज्यादा बूढ़े को क्या किया है जी, खुदा ने बेटे जैसी बख्शिश दी है। इसलिए जब खुदा के फरिश्ते की आवाज को सुने हंसे मत, ये ना कहें ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ज़िकरिया ने कहा ये कैसे हो सकता है, खुदा के फरिश्ते ने कहा अब देखो कैसे होगा। जब तक यूहन्ना की पैदाइश नहीं होगी तू बोल नहीं सकेगा। और अलिशबा छठे महीने से थी, पूरे 3 से ज्यादा महीने तक ज़िकरिया की जुबान बंद हो गई, वो बोल नहीं सकता था। और जब यूहन्ना पैदा हो गया उसके नाम लिखवाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या रखा जाए, उसने पब अपना मुंह खोलकर कहा इसका नाम यूहन्ना बिन ज़िकरिया रखा जाए। तो फरिश्ते ने पत्रस से क्या कहा, उठ अपनी जूती पहन अपनी कमर बांध अपना चोगा ले। और वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और क्या लिखा, जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा था वो वाक्य ही पे है, बल्कि ये समझ कर के रोया देखता है उसके पीछे हो गया। और 10वीं आयत में लिखा है पस वो पहले और दूसरे किले में से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है, वो आप ही उनके लिए खुल गया। वो निकलकर कूचे के उस सिरे तक पहुंचे और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं जब खुदा का फरिश्ता आता है वो कहता है ए जबरदस्त सूरमा जदान उठ, वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी कौम की रहाई के लिए रहनुमाई के लिए उनके लिए लड़े ताकि वो उन तमाम बुत प्रस्ती और जादूगरी में से निकलकर यहोवा खुदा की क्या कर सके जी, इबादत कर सके। और जदौन कहता किससे बात कर रहा है खुदा, खुदा तुझसे मजबूत हो जा मैं तो सबसे छोटा हूं। खुदा खुदा कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा ही इस्तेमाल करूंगा कि तू अपने लोगों की रहाई का वसीला ठहरे। और आगे चलकर देखते हैं कि जदौन ने जो जंग जीती वो 300 आदमियों की जंग 135,000 सामने जो उसके दुश्मन थे कैसे जीत ली, नारे लगाने से मटके तोड़ने से, क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने कहा था कि ऐसा ही करना मैं तुमको फतह दूंगा। खुदा के फरिश्ते का हुक्म माना और 135,000 पर 300 लोग ना तलवार चलाई ना तीर चलाया ना भाला चलाया बल्कि क्या किया, हम जदौन और यहोवा के नाम से आते हैं और बुम 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 और सब दुश्मन क्या हो गए जी, डर गए घबरा गए भाग गए क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म के मुताबिक किया। सो फाटक खुल गए दरवाजे खुल गए। जब पतरस ने खुदा के फरिश्ते को सुना खुदा का फरिश्ता कहता है कि जो कुछ मैं कहता हूं वो कर, उसने करना शुरू कर दिया और फरिश्ता फौरन उसके पास चला गया। फरिश्ता चला गया और यहां पर जब हम देखते हैं 11वीं आयत में पत्रस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया है कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया और अपनी कौम और यहूदी कौम की सारी उम्मत सारी उम्मीद तोड़ दी। जो मुखालिफ थे उन सब की उम्मीद बहुत थी कि पत्रस को कत्ल किया जाएगा, शहर में जलील किया जाएगा, उसका तमाशा बनाया जाएगा। पत्रस कहता है कि खुदा ने अपना फरिश्ता भेज कर क्या कर दिया जी, दरवाजों को खोल दिया। ये वही खुदा है जो दानियल के लिए अपने फरिश्ते को भेजता है तो शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। ये वही फरिश्ता है जो यहां पर पत्रस के लिए भेजा गया कि कैद खाने के दरवाजे खुल जाए। और इस सब के पीछे मकसद क्या था, क्या ताकत थी, क्या कुव्वत थी, किस बात ने आसमान के खुदा के दिल में ये एहसास या ये बात या वलवला डाला कि वो पत्रस के लिए ये करे कि स्पेशल फरिश्ते को भेजे, उसकी जंजीरों को खोले, उसे कहे अपना जूता पहन, अपनी कमर बांध, अपना चोगा पहन, उसके लिए पहला फाटक, उसके लिए दूसरा फाटक, उसके लिए क्या करता है जी, अजीब अजीब काम करता है। और यहां देखते हैं पत्रस कहता है ये खुदावन की तरफ से है। और इसके पीछे वजह क्या थी, ये है वो राज की बात। अगर आप चाहते हैं जुए और बंधन टूटे, अगर आप चाहते हैं कि खानदान बहाल हो, अगर आप चाहते हैं कि आप बहाल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ से आसमान खुल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ के वसीला से खुदा अपने फरिश्तगान की फौजों को भेजे, तो उसके लिए राज क्या है। चौदहवीं आयत में लिखा है, जरा गौर से सुने, ये राज है। और इस पर गौर करके उस यहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है, वहां बहुत से क्या है जी, आदमी जमा होकर क्या कर रहे थे जी, दुआ कर रहे थे। मेरे साथ कहे दुआ कर रहे थे, फिर कहेंगे दुआ कर रहे थे, दूसरे लफ्जों में खुदा से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि खुदावन खुदा मेरे सोचने के मुताबिक, जब यहां पर देखते हैं कि पत्रस कैदखाना में है, यहां पर शिगिर्द मौजूद है, यहां पर यीशु मसीह की मां मरियम मौजूद है। उस रात का वाक्या यीशु मसीह की मां मरियम ने देखा था अपनी आंखों से, जब यीशु को बांधा हुआ था, कोई उसके मुंह पर थूक रहा था, कोई उसकी दाढ़ी को नोच रहा था, कोई उसके तमाचे मार रहा था, कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांध के कहता था अब नबुव्वत से बता किसने तुझे मारा है। यीशु मसीह की मां वहां पर मौजूद थी, पत्रस वहां पर मौजूद था। और जब उस तमाम भीड़ में से तीन मुख्तलिफ जगहों पर पत्रस से ये सवाल किया गया, क्या तू भी उनके साथ है, उसने कहा मैं से जानता नहीं, तू भी उनके शिगिर्दों में से एक है, नहीं नहीं मैं इस आदमी से वाकिफ नहीं। और फिर उसने कहा कि मैं इससे जानता नहीं, मुझे खुदा की क्या है जी, कसम है। पत्रस ने उस रात क्या किया था, यीशु मसीह का तीन दफा इनकार किया था। और यहां पर जो जवाब बैठी हुई है, शायद वो कोई यहां दुआ जो कर रही हो वो ऐसे कर रही हो, खुदावन खुदा दोबारा नहीं, खुदावन खुदा दोबारा नहीं। पत्रस ने उस रात यीशु मसीह के रूबरू तेरा तीन दफा इनकार किया, अब उसने इनकार नहीं किया तो वो कैद खाना में डाला गया है और हमें नहीं पता कि वो वहां से वापस आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बारहवें बाब को तो पीछे पेंतिकोस के दिन से लेके तब तक क्या है जी, बहुत से शगीर्द कत्ल कर दिए गए हैं, बहुत से ईमानदार क्या किए गए हैं जी, यीशु के लिए कुर्बान हो चुके हैं। सुन रहे हैं जी बेटियों, सुन रही हो किसकी बात हो रही है, पत्रस की और यीशु मसीह के शहीदों की। सो कलीसिया वहां पर दुआ कर रही है और मेरा सोचना है कि दुआ में वो कह रहे होंगे खुदा में खुदा दोबारा नहीं, ऐसा ना हो कि पत्रस दोबारा तेरा इनकार करे और कहे कि मुझे यीशु के नाम में इनकार करना लाजमी है और मैं बच जाऊं। उन्होंने कहा होगा खुदावन खुदा उसका हौसला बढ़ा, खुदावन खुदा उसके जज्बात को कायम रख, खुदावन वो तुझ पर तवक्कुल करे, अगर उसका वक्त आ गया है तो वो इस बात को जाने, अब वो दोबारा तेरा इनकार ना करे जैसे उसने उस रात किया था कि मैं इसे नहीं जानता। पहले उसने कहा था मैं यीशु तेरे लिए मरने को तैयार हूँ, और यीशु ने कहा कि मुर्द बांग ना देगा जब तक तू मेरा 3 दफा इनकार नहीं कर लेगा। तो कलीसिया दुआ करिए खुदावन खुदा पत्रस का हौसला बढ़ा, खुदावन खुदा अगर उसे वो डरा रहे हैं, अगर उसे मार रहे हैं, अगर उसे धमका रहे हैं, जैसे पहले भी कहा गया है कि यीशु नाम लेकर दोबारा क्या ना करना, मनादी ना करना। खुदावन अपने बंदा को संभाल। कलीसिया दुआ कर रही है, आपसे सवाल है बहुत दफा, आप मसीही बहन भाइयों के लिए कितनी दुआ करते हैं? अगर नहीं आपके पास फोन है तो उसमें एक अलार्म लगा लें, अलार्म लगा लें जो आपको आयत याद दिलाएगी कि मैंने अपने मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है। अगर नहीं तो अपने घर में एक चिट्ठी लिखकर लगा लें अपने शीशे पर, जितनी दफा शीशा देखें उस पे उस आयत को देखकर कहें मैंने अपने मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है, जो कैद में हैं, जो बेघर हैं, जो यीशु के नाम की खातर सताए जाते हैं, जिन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, जो अपने खानदानों से अलग हैं, उनके लिए दुआ। हमारे पास बहुत वक्त है दूसरी बातों के लिए, लेकिन दुआ के लिए वक्त नहीं होता। और जब हम दुआ नहीं करते तो आसमान नहीं खुलता, जब आसमान नहीं खुलता तो मौजदा नहीं होता, जब मौजदा नहीं होता तो फिर हम कहते हैं हाय मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई, और आसमान से खुदा खुदा देखकर कहता है तूने कब दुआ की। कलीसिया दुआ कर रही है, सारी जमात दुआ कर रही है। 13वीं आयत में लिखा है जब उसने फाटक की खिड़की खोली तो रूदी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई, ये उनमें से एक नुकरानी है जो वहां पर काम करती है, जो शिगिर्दों के साथ यीशु मसीह की जो कह सकते हैं कि पालती है, जो यीशु के नाम से कहलाते हैं, वो क्या कर रहे हैं जी वहां पर आती है आवाज सुनकर। जब क्या होता है पतरस ने दरवाजा खटखटाया, वो आती है और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। पतरस यहां अभी अभी जेल से फरार हुआ है, फरिश्ते ने उसे जेल से निकाला है, और ये लड़की क्या है जी, इतनी खुश है कि वो भूल गई है कि मैंने दरवाजा खोलना है। वो दरवाजा खोलने के बजाय क्या है जी, भागकर सबको अंदर खुशखबरी देना चाहती है और जाकर कहती है पतरस बाहर खड़ा है। जैसे बहुत दफा हम अगर किसी को बहुत मुद्दत बाद मिले हम भूल जाते हैं उससे पानी पूछना, उससे बैठना, उससे कहना कि क्या हाल है क्या नहीं, और क्या करते हैं जी जब सुनते हैं आवाज ओ मेरा दादा आया 12 साल बाद, बुआ भी खोलते भज के अम्मी दादा आया, और दादा बाहर कहता धुंद पैन दया बुआ दे खोलो। ये खुशी का इजहार क्या करती है, पतरस अभी अभी जेल से निकला और ये अंदर जाकर खुशी से मारे क्या कर रही है, सबको कह रही है पतरस आया। उन्होंने उससे कहा जो अंदर बैठे थे तमाम दुआ करने वाले, तू दीवानी है, तेरा दिमाग दूसरे लफ्जों में क्या है, तू दीवानी है, तू चली हो गई है। लेकिन वो यकीन से कहती रही, पतरस है, मैंने उसकी आवाज को सुना है, वो पतरस ही है। और जिन्होंने उसका जो ये बयान सुना था उन्होंने कहा कि काश उसका फरिश्ता हो, काश पतरस मर गया है, इस लड़की ने उसका फरिश्ता देखा है कि वो उसका फरिश्ता देखकर कह रही है वो बाहर खड़ा है। उन्होंने कहा कि तू दीवानी हो चुकी है, पागल हो गई है, ओ अंदर गला करने लगे हुए ओ पतरस नहीं, तू अगर फरिश्ता देखा, ओ नहीं ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਆ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਰਸ ਕੀ ਖੜੋਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪਤਰਸ ਖਟਖਟਾਤਾ ਰਹਾ ਇਹ ਵਹੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਂ ਔਰ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਂ ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਂ ਕਹਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਤਾ ਹੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਟਖਟਾਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਟਖਟਾ ਰਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲੋ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਬਸ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇਖ ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਖੋਲਣਾ ਹੋਗਾ ਜਬ ਦਸ ਯਸੂ ਦਸਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦੇਖ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਅੰਦਰ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਬਰਕਾਤ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਆਪਣੇ ਰਫਾਨ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬਾ ਸੇ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤੋ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੋ ਕਹਿਤੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਤਰਸ ਕੇ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰ ਦੇਖਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਤਰਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਪ ਕਰੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਹੱਥ ਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਹੈ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋ ਭੇਜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਓਂ ਕੀ ਹੱਥ ਖੜੀਓਂ ਕੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਲਗੀ ਥੀ ਉਨਕੋ ਖੋਲਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨ ਆਪਣੀ ਜੂਤੀ ਪਹਿਨ ਔਰ ਮੈਨੇ ਪਹਿਨੀ ਔਰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਟਕ ਖੋਲਾ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਕਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਟਕ ਖੋਲਾ ਔਰ ਮੁਝੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਤਰਫ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੌਰ ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਪੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਔਰ ਉਨਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੁਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਬਤਾਇਆ ਫਿਰ ਕਹਾ ਕਿ ਯਕੂਬ ਔਰ ਭਾਈਓਂ ਕੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕਰ ਵੋ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਕੇ ਪੀਛੇ ਕਿਆ ਥਾ ਜੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਵੋ ਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ ਕੋ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਗੇ ਇਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਤ ਲਗਵਾ ਕਰ ਛੋੜ ਦੇਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਾ ਉਨਕਾ ਮਨਸੂਬਾ ਥਾ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਯਸੂ ਕਾ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਆਂਖੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਉਸਕੀ ਰੂਹ ਕਾਂਪ ਜਾਏ ਉਸਕਾ ਇਮਾਨ ਡਗਮਗਾਏ ਕਿ ਹਮ ਯਸੂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰੋਂ ਕੀ ਜਮਾਤ ਕੀ ਦੁਆ ਸੇ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਾ ਕੈਦਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਜੀਬ ਕਾਮ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਮੌਤ ਪਤਰਸ ਕੀ ਥੀ ਵੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਾ ਲੁਕਮਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਆਗੇ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੇਂ ਜਬ ਸੁਬਾ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮੇਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋੜ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਆਪਕਾ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਆਪਕੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਯੇ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ और कहानी रुक जाती है और हम इंतजार करते हैं कि अगले हिस्से में क्या हुआ। शागिर्द सोच रहे होंगे क्या हुआ, क्या बात चल रही है। पतरस वहां से जा चुका है, लिखा है जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ, उसका क्या बना, वो कहां पर चला गया, कैसे उसने सब जंजीरों को दरवाजों को खोल दिया। ये गुफ्तगु चल रही होगी और 19वीं आयत में लिखा है जब हेरोदीस ने उसकी तलाश की और ना पाया तो पहरे वालों की तहकीक करके, तफ्तीश करके, उनसे बातचीत करके कि तुमने ये कैसे होने दिया, क्या कर दिया जी, उनके कत्ल का हुक्म दिया, उनके लिए मौत मुकर्रर कर दी। असली तौर पर मौत किसके लिए थी जी, पतरस के लिए। और वो मौत किनकी बन गई, उनकी, जिन्होंने पतरस को पकड़ा था। ये सारी कहानी बताने का मकसद क्या है जी, ईमानदारों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कौन कौन चाहता है कि मेरी दुआ के असर से अजीब अजीब काम हो? आप में से कितने यकीन करना चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआ को सुनता है? आप में से कितने चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआ से आसमान का खुदा अजीब अजीब काम करे? तो क्या करना होगा, दुआ करनी होगी। ये सादा सा राज है, इसके लिए कोई जंतर मंतर नहीं पढ़ना होगा, सादा सा कहना होगा यहोवा खुदा, पतरस के खुदा, दानियल के खुदा, मूसा के खुदा, सिद्नस के खुदा, अपना जलाल जाहिर कर, अपने लोगों को रहाई दे। और यहां पर क्या है जी, खुदावंद का मौजजा देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सो कौन कौन दुआ पर यकीन करता है, कौन कौन दुआ करता है? उम्मीद है कि आप सब दुआ करते होंगे, अपने लिए, जूती के लिए, कपड़े के लिए, क्लास के लिए, इम्तहान के लिए, फलां के लिए, टमकां के लिए, मुजजात के लिए दुआ करना शुरू कर दिया। Pray for miracles, not only for new lipstick, new shoes, new car or new credit. Pray for miracles. That's what I'm telling them. Because the prayer of righteous men and women prevail a lot. रास्पास बंदों और बंदियों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और यहां पर हम पढ़ते हैं ऐसा ही हुआ। हालेलुया। कौन कौन दुआ पर अब ज्यादा यकीन रखना रखने के लिए तैयार हुआ है जी, जरा जोरदार तालियां बजाने के लिए हम खुदा अपने खुदा के दिल चुके और उसका शुक्र करें और दुआ करें। दुआ करेंगे एक आवाज होकर, तैयार है जी, आए दुआ करें। खुदावंद खुदा से कहेंगे कि इस मोहल्ले में बेदारी लेकर आ, इस मोहल्ले में अपने कलाम का नूर चमका, इसमें खुदावंद खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और बथेरे नौजवान बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में आए, बथेरे तौबा करें और सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, ताकि हम सब कम होते जाएं, तू बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम।